ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मा कुमारीज के इजी मेडिटेशन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी सीरीज चल रही है इनर वेलबींग पर, जिसमें हम भिन्न भिन्न रीति से भिन्न भिन्न टॉपिक्स द्वारा मेडिटेशन के अनुभव कर रहे हैं, जिससे हम बाहरी वातावरण में, चाहे बाहरी वातावरण कैसा भी हो, लेकिन अपने अंदर शांति, शक्ति, प्रेम, स्टेबिलिटी, ये सब वैल्यूज को ला सके मेडिटेशन के द्वारा, जिससे हमारा अंदर इनर फॉर इनर वेलबींग। इसी सीरीज में आज हम जो टॉपिक लेकर आपके साथ उपस्थित हुए हैं वो है बीइंग लाइट। अब जहां पर हम लाइट शब्द कहते हैं तो लाइट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक लाइट होता है प्रकाश और एक लाइट होता है हल्का। हम सब अपने जीवन में प्रकाश भी चाहते हैं और हम सब अपने जीवन में हल्का भी रहना चाहते हैं। हम कोई भी अपने जीवन में अंधेरा नहीं चाहते हैं, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे दिन आते हैं जिनको हम डार्क डेज कहते हैं, जीवन में अंधेरा आ जाता है, और उस समय हमें रोशनी अर्थात राह की इंतजार होती है। ये भी एक सत्य है कि रात के बाद दिन अवश्य आता है, ऐसा नहीं है सदा रात रहती है, उजाला जीवन में आता ही है। अगर डार्कनेस की डेफिनेशन देखें तो डार्कनेस एक्चुअल में कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ लाइट है। शिवांगी जी पूछती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे फुल स्टॉप हो जाता है, पर कुछ बातों पर नहीं, प्लीज गाइड। ऐसा होता है कई बार हम कुछ बातों पे फुल स्टॉप लगा देते हैं और कहीं कहीं हमारे लिए फुल स्टॉप लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देखते हैं जब हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ब्रेक लगाएं या डाइवर्ट करें। कई बार ब्रेक लगाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर हम बहुत तेज गाड़ी चल रही है और ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी उलटने के चांसेस होते हैं, तो उसमें डायवर्शन का यूज किया जाता है। तो इसी तरह से शिवांगी, अगर आपके लिए फुल स्टॉप लगाना मुश्किल हो रहा है तो मैं राय दूंगी कि आप अपने आप को डाइवर्ट कीजिए, पॉजिटिव की तरफ डाइवर्ट कीजिए, उन बातों से अपने को हटाइए, तो आपके लिए सहज होगा। फुल स्टॉप की जगह डायवर्शन का यूज कीजिए। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आज लाइट की, अर्थात प्रकाश, जीवन में हम प्रकाश चाहते हैं। पूजा जी लिखती हैं, इन मेडिटेशन व्हेन वी गेट एन आंसर, हाउ टू नो इफ इट इज एन आंसर फ्रॉम सुप्रीम और इट इज एन आंसर फ्रॉम माय ओन माइंड। ये अच्छा क्वेश्चन है पूजा। ये हमारे अंदर कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है कि जो हमारे मन में मेडिटेशन के दौरान हमको जो टचिंग हुई है ऑलमाइटी की, वो टचिंग ऑलमाइटी की है या मेरे ही है। मेरा अपना पर्सनल ये अनुभव है कि जब वो सुप्रीम ऑलमाइटी की टचिंग होती है तो वो यूनिक होती है। इसलिए जब आप मेडिटेशन में बैठें तो जो आपकी इच्छा है, जो आप सोचती हैं, उन सब विचारों से अपने आप को क्लीन करके बैठें, ताकि आपको टचिंग जो है राइट हो सके। जैसे एक प्लेन कागज पे जब लिखा जाता है तो स्पष्ट होता है समझना, और अगर किसी कागज पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है और उसके ऊपर आप दोबारा कुछ लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होता है। इसलिए आपसे राय रहेगा कि जब आप आंसर चाहते हैं तो एक तो ये विधि अपनाएं कि अपने चित्त को, अपने मन को मेडिटेशन में एकदम क्लीन, अपने डिजायर से फ्री करके बैठे, तो आपके लिए सहज होगा। और दूसरा, वो टचिंग यूनिक होगी, वो एकदम डिफरेंट होगी, और आपको खुद ही आपके अंतरात्मा से आवाज आएगी कि ये आंसर जो है ये ही राइट आंसर है। तो ये आपको, इसे आपको समझ में आएगा। तो जैसे हम आज बात कर रहे हैं लाइट की, कि जब कहीं अंधेरा होता है तो रोशनी हमको रास्ता दिखाती है, प्रकाश से हमें रास्ता समझ में आता है। हमारे अंदर जब हम कंफ्यूज होते हैं, हम दुविधा में चले जाते हैं, हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, ऐसे समय पर हमें रोशनी चाहिए होती है। इसलिए लोग आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, इस तरह का विजडम अपने अंदर डेवलप करते हैं पढ़ करके सुन करके, जैसे कि आप सब कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान रोशनी का काम करता है, इसलिए हम कहते हैं कि नॉलेज इज लाइट। नॉलेज के लाइट में हमारे लिए हर चीज रास्ता साफ नजर में आता है। इसलिए अगर मन में कंफ्यूजन है तो बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकिंग अर्थात विजडम के आधार पर हम डिसीजन देते हैं। तो अपनी बुद्धि को हम जितना वाइज बनाते हैं, है ना, जैसे आप देखते हैं कि दिवाली के दिनों में हम अपने घर में दिए जलाते हैं, तो दिए जलाने के लिए उसमें घृत अर्थात ऑयल डाला जाता है, तो नॉलेज ऑयल है। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान है, हम अपने अंदर कितना ज्ञान भरते हैं, उतना ही हमारे जीवन में लाइट अर्थात ब्राइटनेस रहेगी। तो इसलिए जितना अपने अंदर आप ज्ञान का, नॉलेज का, विजडम का ऑयल डालते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर लाइट होगी। अगर ये शरीर देखें तो शरीर अगर दूसरे ढंग से समझे तो ये शरीर एक दीपक है और आत्मा उसमें बाती है और बुद्धि जो है वो ज्ञान है, जिससे हमारा जीवन में लाइट आती है। तो अगर हम अपने जीवन में ब्राइटनेस चाहते हैं, लाइट चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, तो उसका सबसे सहज तरीका है कि आध्यात्मिक ज्ञान सुने समझे, और सिर्फ सुने समझे नहीं, उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में लाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में लाइट ही लाइट हो जाएगी और आत्मा अपने में ही एक लाइट है और दूसरी परमात्मा, परमात्मा भी एक लाइट है। तो जब हम इन सत्य ज्ञान को, इन सब बातों को समझते हैं, इस स्वरूप में रहते हैं, तो हमारा जीवन में लाइटनेस आती है अर्थात प्रकाश ही प्रकाश आता है, और जहां प्रकाश है वहां खुशी है। इसलिए तो दिवाली पर हम इतनी लाइट्स करते हैं, ज्यादातर लाइट्स कब करी जाती हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं, कोई ऐसा फेस्टिवल होता है या घर में ऐसी कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, घर को दियों से, लाइट से जगमगा देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो, हमारे जीवन में ब्राइटनेस हो, तो सदा अपने अंदर लाइट ऑन रखें, कभी भी अंधेरा ना आने दे। अज्ञानता अंधेरे का नाम है, ज्ञान रोशनी का नाम है। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान का सूर्य परमात्मा है, जब हमारा उनके साथ संबंध जुड़ता है, उनको हम अपना आध्यात्मिक टीचर मानते हैं, वही सुप्रीम टीचर है, और उनके ज्ञान से और उनकी पढ़ाई से अपने आप को, अपनी बुद्धि को वाइज बनाते हैं, तो हमारे जीवन में ब्राइटनेस आती है। तो चलिए अभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं और अपने अपने अंदर का दीपक भी जलाते हैं, और परमात्मा जो स्वयं ही एक बहुत बड़ी रोशनी है, सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, तेजोमय है, उनके साथ कनेक्ट होकर अपने अंदर लाइट जो है वो डेवलप करते हैं। तो चलिए मेडिटेशन में बैठते हैं, स्वयं को एकाग्र करें, एकदम बैठे। क्लीन और क्लियर बुद्धि, अपना मन सब बातों से फ्री हो जाए, अपने आप को हल्का कर लें। मैं एक डिवाइन लाइट, एक एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं, दिव्य प्रकाश हूं, मैं स्वयं को। सेंटर ऑफ द फॉरहेड, एक दिव्य सितारा अनुभव कर जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं वो दिव्य सितारा हूं, मेरे मस्तक पे प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्यता है। अब स्वयं के मन और बुद्धि को ऑर्डर दीजिए कि इस देह से ऊपर, इस फिजिकल वर्ल्ड से डिटैच हो अपने मन और बुद्धि को डिवाइन वर्ल्ड में, वर्ल्ड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। परम धाम में फोकस करें। द सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम। क्या चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है? और इस दिव्य प्रकाश में मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एक स्टार चमक रहा हूं। ऑलमाइटी सुप्रीम, जो परम ज्योति है, आपसे दिव्य किरणें मुझ पर पड़ रही। और मेरे अंदर की नेगेटिविटी, वीकनेसेस बर्न होती जा रही है और मैं स्वयं को लाइट एक्सपीरियंस कर रही हूं। परमात्मा की पावरफुल रेस मुझ आत्मा पर पड़ रही हूं। और मेरे अंदर की अननेसेसरी डिजायर्स जो मुझे दुख देती, वो सब मेल्ट हो रही और मैं स्वयं को संतुष्ट अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा की, सुप्रीम सोल की पावरफुल रेस मुझे स्ट्रांग बना रही, पावरफुल बना रही। स्वयं को चार्ज कीजिए, एम्पावर कीजिए परमात्मा से। अब धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को वापस इस देह रूपी कॉस्ट्यूम में ब्रिकेट के बीच, मैं डिवाइन लाइट हूं, इस कॉन्शियस में आ जाए। ओम शांति। तो अपने आप को हमने परमात्मा से कनेक्ट किया मेडिटेशन के द्वारा, और अपने आप को ब्राइट लाइट, अपने अंदर का प्रकाश जो डिवाइन लाइट है, उसको जागृत किया, उसको ऑन किया। और अभी भी हम उसी अवेयरनेस में हैं, प्रेजेंटली भी, कि वी आर ऑल लाइट्स। हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश, वो दिया सदा जलता रहता है आत्मा रूपी। आप सबको मेडिटेशन के द्वारा कैसा अनुभव हुआ, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, और आपके कोई प्रश्न है तो वो भी आप लाइव चैट में हमारे से पूछ सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं आज बीइंग लाइट की, तो दूसरा जो लाइट का अर्थ होता है वो होता है हल्का रहना। कई बार हम अंदर से अपने आप को, स्वयं को बहुत भारी फील करते हैं। एक तो होता है शरीर का भारीपन, शरीर का मोटापा, और एक होता है मन का भारीपन, मन से भारी हो जाते हैं। अब मन का भारीपन क्या है? मनीषा जी लिखती हैं, एकदम दीदी मेरी मेमोरी लॉस हो रही है, कंसंट्रेशन भी नहीं बना रहा, क्या चल रहा है पता नहीं, प्लीज हेल्प। मनीषा जी, थोड़े समय के लिए अपने मन को एकदम हल्का कर लीजिए। जो भी आपके मन में इस तरह के ब्लॉकेजेस हैं, जो थॉट्स के फॉर्म में हैं, उन सबसे ऊपर उठिए, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपका कोई इस तरह से मेमोरी लॉस नहीं है, लेकिन एक ये टेम्पररी है। कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो अंदर से इस तरह की फीलिंग आती है। आप अपने आप को एकदम लाइट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे मैं ख्याति जी लिखती है, मेडिटेशन करते वक्त हम गहराई में कैसे जाए मैम? जैसे आप समुद्र की गहराई में जाते हैं तो उसमें गहराई में जाने के लिए डीप जाना पड़ता है, तो उसी तरह से मेडिटेशन में आप अपने अंदर, इट्स अ जर्नी विद इन, अपने अंदर अपने विचारों से जितना फोकस करते चले जाएंगे डीपली अपने अंदर, और दूसरा जितना परमात्मा पे फोकस करेंगे, ऑल माइटी पे फोकस करेंगे, तो आप उससे डीपली चले जाएंगे। गोपाल कृष्ण जी लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेट फॉर मेडिटेशन इज डिफिकल्ट फॉर मी। गोपाल कृष्ण जी, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जब आप मेडिटेशन में बैठे तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है कि अपने आप को सब संकल्पों से, जो भी विचार है, जो भी थॉट्स हैं आपके अंदर, उससे अपने आप को न्यूट्रल मोड में लेकर आना है, तो आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अर्थात अपने ऊपर जो है डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से एक डिटर्मिंड थॉट लेकर बैठना पड़ेगा, एक पर्पसफुल थॉट लेकर बैठना पड़ेगा कि मुझे अब इस समय कोई और थॉट्स नहीं चलाने हैं, जो भी बातें हैं उन सबको मुझे 10 मिनट के लिए इग्नोर करना है, भूलना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आपको सफलता मिलेगी। उमा जी लिखती हैं, फीलिंग वेरी नाइस फीलिंग आप जब कराते हो तो मैं जैसे ब्रह्मलोक पहुंच गई। थैंक्स दीदी, थैंक यू उमा, आपको अनुभव हुआ। वीना जी लिखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स, थैंक्स वीना, आपको अच्छा लगा। ओम प्रकाश जी लिखते हैं, आई एम फीलिंग लाइट एंड हैप्पी। सदा आप लाइट और हैप्पी रहे, हमारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा। ओम शांति लिखते हैं, योग बहुत अच्छा लगा। वॉश हैंड्स, जरूर आपका ये जो मैसेज है कि हमें बार बार अपने जैसे हाथ धोने हैं ना, तो सभी को अपने मन को भी बीच बीच में वायरस फ्री करना है, उसमें भी जो मैल है उसको क्लीन करते रहना है। रसीला जी लिखती है, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एंड लाइट स्टेज। थैंक्स, थैंक यू रसीला जी, आपको लाइट फील हुआ। धर्मेश कुमार जी लिख रहे हैं, आज कॉन्सेंट्रेशन कर पाया हूँ। मुबारक धर्मेश कुमार जी, आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए हैं। आगे भी इसको कंटिन्यू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपका कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं हल्के होने की, दूसरी बात, एक लाइट प्रकाश, एक लाइट हल्का बन, तो अपने आप को सदा लाइट रखिए। हमको भारी करने वाले हमारे अपने ही वेस्ट नेगेटिव थॉट्स होते हैं। गुरजीत कौर जी लिखती हैं, आई ऑलवेज ओवर थिंकिंग ऑन ऑल इश्यूज, एवरीथिंग हर्ट मी, प्लीज हेल्प। गुरजीत जी, यही मैं अभी कहना चाह रही हूँ, जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, हम ओवर थिंकिंग यूजली वेस्ट थिंकिंग होती है, अननेसेसरी होती है, और वही हमको भारी करती है। इसलिए प्लीज अवॉइड ना, कि हमें से नो टू ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, वेस्ट थिंकिंग को हमें नो कहना सीखना है। नहीं, मुझे नहीं करना है, तभी सक्सेस मिलेगा। विजय कुमार जी लिखते हैं, माय क्वेश्चन इज हु एम आई, आई एम अ सोल। पूजा जी लिखती है, अनेबल टू कंट्रोल माय थॉट्स। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं, डाइवर्ट करना है, वो ज्यादा सहज होगा। उनको दबाइए नहीं, कभी भी अपने विचारों का दमन नहीं कीजिए। कई बार हम अपने विचारों को, अपने थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और वो फिर वल्कनों की तरह बाहर आते हैं। इसलिए प्लीज अपने थॉट्स को सप्रेस नहीं कीजिए। कंट्रोल करने का मतलब सप्रेशन नहीं है, उनको या तो डाइवर्ट कीजिए, या फुल स्टॉप करिए, या इग्नोर कीजिए। तो ये आप मेथड अपनाएं तो वो ज्यादा इजी होगा, और ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचारों को जन्म दे अपने अंदर। संगीता जी लिखती है, योग के समय नींद क्यों आती है? संगीता जी, जब इसीलिए हम ओपन आई मेडिटेशन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि नेचुरल है जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम रिलैक्स होते हैं, तो जब रिलैक्स होते हैं तो चांसेस है कि हमें नींद आती है ना, क्योंकि हम रिलैक्स। लेकिन अगर हम चर्निंग करते रहेंगे, हम जो इनिशियल स्टेज है उसमें हम चर्निंग करना छोड़ देते हैं, कंटेम्प्लेशन करना छोड़ देते हैं, विचारों का अंदर में पॉजिटिव विचारों का चयन करना छोड़ देते हैं, तो इसलिए नींद आती है, अपनी एकाग्रता छोड़ देते हैं, है ना। तो इसीलिए उसको नहीं छोड़े और आंखें खोल के बैठे तो आपको नींद नहीं आएगी। मन और बुद्धि दोनों को एक्टिव रखें। गोपाल राम जी लिखते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में ध्यान कैसे लगे, आप उपाय बताओ। गोपाल राम जी, ध्यान के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमारा ध्यान वहीं लगता है जहां पर हमारा इंटरेस्ट होता है, शौक होता है। जहां पर शौक होता है वहां पर ध्यान लगाना इजी हो जाता है। इसलिए बच्चों का पढ़ाई में शौक पैदा कीजिए, उनको उसके फायदे बताइए, तो उनके लिए वहां पर ध्यान करना जरूरी होगा और सहज भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा कई बार बच्चों के साथ हमको एक्स्ट्रा, और उसको कुछ इस तरह की पढ़ाई में हमको, जैसे आजकल तो बहुत अच्छे साधन निकलाए हैं जिससे बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, तो मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा सा बच्चे को समझे कि उसको क्या पसंद है और उस अनुसार उसको पढ़ाए और उसको मोटिवेट करें, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उस चॉइस के अकॉर्डिंगली चलेंगे और थोड़ा सा उसको समझेंगे तो सहज होगा। तो अपने आप को क्या रखेंगे, हल्का रखेंगे, मन में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं। सारिका जी लिखती हैं, मैं शांत नहीं रह पाती हूँ, चिड़चिड़ापन आता है तो मैं क्या करूं। इरिटेशन का जो मुख्य कारण होता है वो मन में कहीं ना कहीं या अपने प्रति या दूसरों के प्रति सूक्ष्म में क्रोध होता है, नाराजगी होती है, असंतुष्टता होती है, जिस कारण से हम इरिटेटेड रहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो हमारे अंदर इरिटेशन आता है, चाहे अपने आप से हमारी इच्छाएं हों या दूसरे से हमारी इच्छाएं हों। इसलिए अपने अंदर संतुष्टता लाएं, जो आपको दूसरों से और अपने से प्राप्त हुआ है उसको सहज स्वीकार करें, अपने आप को इजी बनाएं, एक्सपेक्टेशंस कम कर दें, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा। देवश्री लिखते हैं, राजयोग मेडिटेशन मेरे लाइफ चेंज कर दिया है, थैंक्स। थैंक यू देवश्री, आपके अंदर परिवर्तन आया मेडिटेशन से, क्योंकि ये परिवर्तन मुझे भी शांति देगा और अन्य को भी शांति देगा। तो आज जैसे हम बात कर रहे हैं लाइट की, तो आप दोनों प्रकार से लाइट ली रहिए, डबल लाइट, वैसे भी लाइट बना रोशनी और हल्के भी रहिए ना, ये प्रैक्टिस जरूर करिए। सुश्री जी लिखती है, मेडिटेशन के टाइम बहुत थॉट आते जाते रहते हैं, हाउ टू कंट्रोल इट। जैसे मैंने बताया कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो जो आपके अंदर विचार आ रहे हैं उन विचारों को कंट्रोल शब्द थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। जब हम कंट्रोल शब्द कहते हैं ना, तो मुझे लगता है मुझे उसको रोकना है, तो आप विचारों को रोक नहीं सकते हैं ना। आप जैसे गाड़ी चल रही है तो एकदम से तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं, तो कंट्रोल शब्द की जगह आप उसको डाइवर्ट कीजिए। और अगर आपको ब्रेक लगानी भी है तो कौन से विचारों को लगानी है जो अननेसेसरी है, तो अगर आपसे ब्रेक नहीं लगती है तो डाइवर्ट कीजिए अपने आप को। जैसे छोटे बच्चे का माइंड क्या करते हैं, अगर वो गलत तरफ अट्रैक्ट होता है तो हम ज्यादातर उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, उसके इंटरेस्ट की तरफ। उसी तरह से मेडिटेशन में हमें अपने विचारों को डाइवर्ट करना है। डाइवर्शन इजी है, कंट्रोल थोड़ा सा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर लोग थॉटलेस स्टेज पे जाने की कोशिश करता है कि मेरे अंदर थॉट्स आए ही नहीं जब मैं मेडिटेशन में बैठे, तो उसमें और ही ज्यादा क्या होता है, थॉटलेस स्टेज तो होती नहीं, मन में कुछ ना कुछ थॉट्स तो आएंगे ही। तो वो थॉटलेस स्टेज को जब टारगेट बनाते हैं या मन को कंट्रोल, माना उन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। नीति रस्तोगी जी लिखते हैं, फादर एक्सपायर्ड 2 डेज बिफोर, हाउ टू हैंडल। नीति, जो भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है, इसलिए जो भी हुआ उनको स्वीकार कीजिए और उनके प्रति मेडिटेशन कीजिए, अगर आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, कि वो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, एक ड्रेस छोड़कर दूसरी ड्रेस पहन लेती है, उनका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो वो जहां भी हो उनके प्रति शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखें, शांति का उनके प्रति वाइब्रेशंस भेजें ताकि उस आत्मा को शांति मिले और वो जो नेक्स्ट जन्मी है वो उनकी सुख में हो, ये शुभकामनाएं दे। अगर आप अपने अंदर दुखी होंगे, रोएंगे, परेशान होंगे, तो वो वाइब्रेशन सटल फॉर्म में उनको भी दुखी और परेशान करेंगे, इसलिए उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और उनके प्रति शांति का दान दें। हम भी उनके प्रति विशेष शांति के वाइब्रेशंस जरूर देंगे ना? तो चलिए अभी हम फिर से मेडिटेशन में बैठते हैं, मन को एकदम शांत कर लें, अशांति के विचार, भारी करने वाले विचार, जो भी मन में इस तरह की बातें हैं, उन सब बोझ को हटा दें। जैसे हम सर पे कोई बोझ उठा के चलते हैं तो भारीपन फील होता है ना, तो अपने अंदर मन में जो चाहे परिस्थितियों का बोझ है, चाहे इच्छाओं का बोझ है, एक्सपेक्टेशंस जो फुलफिल नहीं हो पाई हैं, या जो हमने गोल रखे हैं अपने जीवन के, उन गोल्स तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, अचीव नहीं कर पाए हैं, वो मन में फेलियर की भावना से बोझ के रूप में हमारे अंदर है, कहीं हम अपने आप से ही असंतुष्ट हैं, कहीं दूसरों से असंतुष्ट हैं, कहीं समाज से असंतुष्ट हैं, कहीं हम अपनी बीमारी से परेशान हैं, या दूसरों के दुख दर्द से परेशान हैं। इन सब बोझ को जो मन में चित्त में हमारे कॉन्शियस में जगह बनाकर बैठे हुए हैं, जो हमें निरंतर आंतरिक बोझ का अनुभव कराते और हम अंदर से हेवी बर्डन फील करते, कुछ पास की ऐसी घटनाएं जो सुख में नहीं है, या मेरी पास्ट की कुछ ऐसी गलतियां जो आज मुझे भारी कर रही, इन सब को एकदम भूल जाए, अपने चित से, अपने मन से निकाल दें, क्योंकि ये किचड़ा है, व्यर्थ है, जैसे हम अपने घर का किचड़ा निकालते हैं, उसी तरह से इन सब व्यर्थ की बातों को, बोझ को गार्बेज बॉक्स में डाल दें और अपने आप को एकदम हल्का कर दें। आप देखेंगे जब हम स्वयं को इनसे मुक्त कर लेते तो स्वयं को लाइट फील करेंगे। और अब मेरे अंदर केवल और केवल शांति है, सकारात्मक ऊर्जा है, प्रेम है, संतुष्टता है, खुशी है, आनंद है, और कुछ भी नहीं, केवल और केवल पॉजिटिविटी है, लाइट है। आई एम फीलिंग लाइट। अंदर में प्रकाश भी है और हल्कापन भी है। आई एम डबल लाइट। ये अवस्था, ये स्टेज एलिवेटेड स्टेज है, क्योंकि जो लाइट है वही फ्लाई कर सकता। इस एलिवेटेड स्टेज में मुझे सब कुछ, हर बात बहुत छोटी, स्पष्ट और सहज समझ में आ रही है। मैं स्वयं को और अपने आसपास जो भी मेरे संबंधी हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, उनको इजीली समझ पा रही हूं, अंडरस्टैंड कर पा रही हूं, क्योंकि मैं लाइट हूं। जैसे रोशनी में हर चीज स्पष्ट नजर आती, ऐसे मुझे हर बात एकदम क्लियरली समझ आ रही, और मुझे हर बात का सल्यूशन भी मिल रहा, बिकॉज आई एम लाइट। मन भी एकदम हल्का है, चित्त में भी, कॉन्शियस में भी कोई बोझ नहीं, कोई बर्डन नहीं। आई एम डबल लाइट। आई एम रिलैक्स। I'm refresh. ये डिवाइन लाइट मेरे मस्तक से पूरे कमरे में फैल रही और चारों ओर का वायुमंडल दिव्य सकारात्मक होता जा रहा है। ओम शांति। तो अभी हमने जो अभ्यास किया, मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन इज एक्चुअली अ एक्सरसाइज ऑफ द माइंड। ये एक मन की एक्सरसाइज है। जिस एक्सरसाइज से हम अपने आप को रिलैक्स और रिफ्रेश करते हैं, अपने आप को लाइट करते हैं। जैसे जब शारीरिक रूप से कोई बहुत मोटा होता है और हम जानते हैं कि ओबेसिटी जो है उसके कारण से शारीरिक कई बीमारियां लगती हैं, उसी तरह से जब हमारे मन में मोटापा आ जाता है अर्थात बोझ आ जाता है, हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा खाने से मोटापा आता है, उसी तरह से ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन है एक्सरसाइज। तो मेडिटेशन एक तरह की एक्सरसाइज ऑफ द माइंड है। अगर हम सारा दिन में बीच बीच में अपने आप को लाइट करते रहेंगे, चाहे डिवाइन लाइट प्रकाश अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश बीच बीच में जलाते रहेंगे और हल्के करते रहेंगे, तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। कुमारी प्रिया जी लिखती हैं, सिस्टर अफर्मेशन के बारे में कुछ बताएं, इसे कैसे सक्सेस बनाएं। आजकल बहुत लोग सोचते हैं, ये एक है कि अफर्मेशन हमको जो भी चाहिए अगर हम वो अपने अंदर रिपीट करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन उसके सिर्फ अफर्मेशन सिर्फ बोलना ही नहीं, सोचना ही नहीं है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी लाना है। आप उसको मंत्र की तरह नहीं लीजिए कि बस बोलते रहिए, लेकिन कर्म भी करना है ना, तो उसका कॉम्बिनेशन चाहिए। स्वाति नागेश जी लिखती है, मेरे बच्चे को पढ़ाई करते समय लेजी रहता है। देखिये, यूजली जैसे मैंने पहले भी बताया कि लेजीनेस हमें वहीं आती है जहां हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, और जहां इंटरेस्ट होता है वो अगर हमको नींद भी आ रही होती है तो हम उठ जाते हैं। उसी तरह से बच्चों में पढ़ाई के प्रति थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, इसलिए वो लेजी होते हैं। आपको उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। कविता जी लिखते हैं, मेडिटेशन से सब सही होता थैंक्स, बट मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने ओरिजिन को खत्म कर देते हैं। कविता जी, आपका ओरिजिनल फॉर्म क्या है? मेडिटेशन में तो हम अपने ओरिजिनल से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि ओरिजिनली आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम प्योर सोल, ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। तो मेडिटेशन तो हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप की तरफ लेके जाता है, ना कि हम अपने ओरिजिनल से डिस्कनेक्ट होते हैं। जिसको हम अपना ओरिजिनल समझ रहे हैं, एक्चुअली वो एक्वायर्ड है। प्रियंका जी लिखती हैं, जब अपनों से अपनापन नहीं मिलता है तो क्या करें? अपनों से अपनापन नहीं मिलता, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। हो सकता है कि जो अपनापन आप ढूंढ रहे हैं, जिस तरह से आप चाह रहे हैं, वो उस तरह से आपको नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि हर एक के अपने अपने हैबिट्स, हर एक के अपने अपने होते हैं। तो आप अगर उनको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको वो बिलोंग, और आप उनको अपनापन दीजिए तो आपके अंदर भी, आप अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ कीजिए तो आपको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी। रश्मि जी लिखती हैं, आई जज पीपल ऑल द टाइम, हाउ डू आई मेक चेंजेस इन दैट। रश्मि जी, होता यही है कि हम ज्यादातर अपने वकील और दूसरों के जज बनते हैं। अपनी गलती को हम वकालत करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। ये कॉमन है, ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं और दूसरे को हम हमेशा जज करते हैं। तो मेरा आपसे सुझाव रहेगा, ना अपने वकील बनिए ना दूसरों के जज बनिए, क्योंकि परमात्मा सुप्रीम जज बैठा है। जब भी आप दूसरों को जज करें तो उसको जो है परमात्मा ऑलमाइटी के आगे फॉरवर्ड कर दें कि ये मेरा रोल नहीं है, आई एम एन एक्टर। जज करना उस परमात्मा का कार्य है, वो सुप्रीम जज है, वो जज करेगा, दैट्स नॉट माय रोल। जैसे एक ऑफिस में भी जिसको जो ड्यूटी मिली है वो वही करता है, दूसरे का रोल नहीं प्ले करता। एक्टर भी अपना रोल प्ले करता है, उसी तरह से उस समय अपने आप को रिमाइंडर दीजिए कि आई एम नॉट अ जज, तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। अपने आप को बार बार थोड़ा सा टोकना पड़ता है। जैसे हम किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए, सबसे बोलती किसी भी हैबिट को चेंज करने के लिए कैसे की जाती है, जैसे आप बच्चों की हैबिट कैसे चेंज करते हैं, उनको बार बार टोक के, इसलिए अपने आप को भी बार बार टोकना पड़ता है तो हमारी हैबिट्स चेंज हो जाती है। गुरजीत कौर जी लिखते हैं, व्हाट इज राइट टाइम फॉर मेडिटेशन। गुरजीत जी, राइट टाइम ऑफ मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला होता है, वो बहुत अच्छा शुद्ध पवित्र उस समय वायुमंडल होता है। तो उस समय जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वायुमंडल का भी सहयोग होता है, और अभी जो हम कर रहे हैं ये भी इवनिंग टाइम भी बहुत अच्छा टाइम है मेडिटेशन के लिए। संगीता जी लिखती हैं, दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगा। तो आज आप सबने लाइट फील किया होगा और उम्मीद करते हैं आप सदा लाइट रहेंगे और सबको लाइट रखेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आज का ये सेशन यहीं पूरा करते हैं। कल पुनः आपसे शाम को मिलेंगे और इजी मेडिटेशन के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मेडिटेशन के अनुभव के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।